તારીખ 9/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 522 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 91.
મોળા પડવાનો પ્રકાર બનવા યોગ્ય છે. મોળા પડવું એટલે શું? કસાય કે મંદતા નથી. ટીકા પડવા મતલબ કસાય કે મંદતા નહીં હૈ, રસ કી મંદતા. કસાય રસ કી મંદતા.
અનુભાર કો ક્રિયા
છે. અનુભાગ, અનુભાગ કહે છે. અનુભાગ કયો? રસ કયો? અનુભાગ શાસ્ત્રીય પરિભાષા છે. સાદી ભાષા મેં હમ ઉસકો રસ કહેતા હૈ.
કસાય ને કસાય રસ બે વસ્તુ થઈ,
દો ડિફરન્ટ ફેક્ટર હૈ. એક એક પર્યાય કે ડિફરન્ટ. कषाय तीव्रमंद होता है और कषाय रस भी तीव्रमंद होता है. दोनों एक साथ कभी चलता है, कभी एक साथ नहीं भी चलता है. तीव्रमंदता में कभी एक साथ भी हो जाते हैं तीव्रमंद, कभी एक तीव्र होता है एक मंद होता है, कभी एक मंद होता है दूसरा तीव्र होता है. दृष्टांत ले लेना कि कोई हमारे संप्रदाय में धर्म बुद्धि से व्रत आदि करता है, उपासना करता है, तो कषाय तो इसकी मंद रहती है, लेकिन कषाय रस मंद नहीं होता है. कषाय रस भी तीव्र हो जाता है, उनको पता नहीं पड़ता है. लेकिन दर्शन मोह तो तीव्र होता ही है, तो दर्शन मोह के साथ कषाय रस भी तीव्र हो जाता है. ऐसा
कषाय रस उसको किसको बोलने का
है? उनको जो जो शुद्धाव है, जो शुद्धाव है, तो शुद्धाव में रस पड़ता है उसको. क्या शुद्धाव रूप जो कषाय है, मंद कषाय है, उसका उसको बहुत तीव्र रस रहता है. ऐसा कोई कहेगा इतना, कोई ऐसा भी कहेगा कि एक क्या 10 उपासना ऐसे कर सकते हैं? तब बोलो इतना उपास कर रहे हैं, रस चढ़ जाता है ना, रस चढ़ जाता है. जैसे कोई भक्ति बहुत करता है तो भक्ति रस आता है, तो कषाय तो मंद हो ही जाती है. लेकिन कोई बोलेगा कि आप 2-3 घंटा भक्ति करते थकते नहीं? कि नहीं थकते हैं. क्यों? हमको रस आता है, ये कषाय रस है. हाँ, रस पड़ता है, तो रस में थकान कम लगेगी. जिसमें रस होता है उसमें थकान कम लगती है, थकान होने पर भी दिखती नहीं, लगती नहीं. ये इसका फैक्टर है. दूसरा फैक्टर रस का क्या है कि समय कहाँ चला जाता है उसका पता नहीं चलता है उसको. ऐसा भी बनता है, ये रस का फैक्टर है. रस आता है वहां, कहाँ समय चला जाएगा उसका पता नहीं लगता है. अज्ञानी को गुस्सा आता है तो कषाय तीव्र भी होता है, रस भी तीव्र होता है. ज्ञानी को गुस्सा आता है, कषाय तीव्र होता है, रस तीव्र नहीं होता है. ऐसी बात नहीं. वो साथ में भी चलता है और अलग अलग भी चलता है, क्योंकि उसकी दोनों की सेपरेट एंटिटी है. उसकी जो पहचान है वो तो सेपरेट है, तो अलग अलग समझना चाहिए. तो हमारा मुमुक्ष की भूमिका में जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है कि कषाय रस तीव्र नहीं होना चाहिए. कहीं भी कषाय रस तीव्र नहीं होना चाहिए. परिणाम में चिकास नहीं आनी चाहिए, चिकने परिणाम नहीं होने चाहिए. ये रस के परिणाम है. तो ये अनंतानुबंधि क्रोध मान माया लोभ है, उसकी चिकनाई घट जाती है, रूखे भी होने लगते हैं. ऐसे कि बनवा योग्य है कि जैसा हो सके अनुक्रम से वे कषाय परीक्षीण पना को प्राप्त होता है. ठीक है, होने से परीक्षीण पने क्षय होने के योग्य होते हैं. क्यों? कि परिणाम में जो भी रस है उसमें ताकत है. जिसकी ताकत टूटी तो नाश होने के योग्य होगा. ताकत जिसकी नहीं है उसका नाश हो जाएगा. तो ये फिटे हो गए तो वो आगे जाकर के खत्म हो जाएगी, चतुर्थ स्थान में अनंतानुमुंडी मिल जाएगी। क्या कारण लिया ऐसा होने का? सत्पुरुष की पहचान
जी।
पहचान मात्र से इतना काम होता है, चारित्र मोह की प्रकृति का तो रस टूटेगा ही, साथ साथ दर्शन मोह की ताकत भी टूटेगी, ये दोनों साथ होता है।
इसका उल्टा लिया तो जिसको ऐसा नहीं हुआ रिजल्ट में, तो उसको सत्पुरुष की पहचान नहीं हुई,
पहचान नहीं, पहचान नहीं हुई तो उसका रस मंद नहीं होगा, दर्शन मोह भी मंद नहीं होगा। और कोई सत्पुरुष का विरोध करेगा तो ज्ञान का विरोध करेगा तो उसकी अनंतानुमुंडी भी कषाय तीव्र होगी। और उसका दर्शन मोह भी तीव्र होगा, दोनों तीव्र हो जाएंगे। ये इनके विरुद्ध प्रकार है। अब कहते हैं इस सत्पुरुष की पहचान जैसे जैसे जीव को होती है वैसे वैसे मताभिग्रह दूर आग्रहता आदि भाव भी इसके फीके पड़ने लगते हैं। एक तो मताग्रह छूटता है संप्रदाय बुद्धि और अपना अभिप्राय का आग्रह, हमने माना है हमारा अभिप्राय जो बना है वही सही है, ऐसा एक आग्रह रहता है वो आग्रह फीका पड़ने लगता है। और अनेक प्रकार के जो दुराग्रह है वो भी छूटने लगते हैं, मिथ्या आग्रह भी छूटने लगते हैं।
जैसे जैसे होने लगती है मन,
ऐसे सत्पुरुष का संग रहता है तो किसी को तो पूरी पहचान आती है, तो उनको तो ऊपर बता दिया वो है। कोई ऐसी भी योग्यता वाले हैं कि अधिक समागम करने पर थोड़ा थोड़ा एहसास होता है, एक बात कोई ऐसी लगती है, एक बार ये बात कोई विशिष्ट लगती है
जी,
तो पूरी पहचान नहीं आती है। लेकिन जितना परिचय से वो समीप भर्ती होता है उतना उतना उनको अधिक विश्वास आने लगता है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है अगर देखे तो, कि उसमें वो फर्क पड़ता है कि उसका मताग्रह दुराग्रह आदि जो अवगुण है वो अवगुण उसके फीके पड़ने लग जाते हैं। क्या होते है? बात बात में आग्रह हो जाता है। आम मनुष्य को, आम मनुष्य को भी, सामान्य मनुष्य को भी बात बात में आग्रह होता है। मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, मेरा अभिप्राय है वही सही है, तो बदल नहीं सकता। तो ये तो सब मिथ्या है, इसका ठीक नहीं है। तो वो तो ढीला पड़े तो बदलने के योग्य हो सकता है, मजबूत हो तो बदलने के योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जीव ने अनेक प्रकार से गलत निश्चय भी किया है, कुछ न कुछ मान रखा है। हरेक ने अपना अपना कुछ न कुछ अभिप्राय और मान्यता बना रखी है, ऐसा हुआ ही करता है। तो उसमें उसको बदलने में कब देर लगेगी, तो मजबूत होगा तो तीव्र होगा तो। और सत्पुरुष की पहचान होने से उसमें ढीलापन आ जाता है। एक तो यह बात इसमें होती है कि सत्पुरुष स्वयं सरल होते हैं
जी,
और इनके संग में आने वाले कुछ सरलता को भी देखते हैं। जैसे जैसे पहचान होती है तो ऐसे कुछ न कुछ गुणों का उसको दिखने लगते हैं, तो उसकी सरलता बहुत असाधारण होती है। जैसे मुमुक्ष की भूमिका की सरलता बहुत बढ़ जाने से तो ज्ञानी होते हैं, तो असाधारण जो सरलता है वो बहुत से प्रसंग में दिखी जाती है। जब बहुत से प्रसंग में ये सरलता दिखी जाती है तो उनको लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो हमको भी सर्व हमारे आग्रह भी
छोड़ने
चाहिए। प्रतिपक्ष
आग्रह जिंद ये सब सरलता का प्रतिपक्ष होता है। वक्रता ये सब ये आग्रह भी एक वक्रता ही है और क्या है, तो ये उसके भी छुपने लगते हैं। खास करके इस पहलू लेना मताग्रह दुराग्रह ये सरलता के प्रतिपक्ष होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी सरल परिणामी होने लगता है
जी।
और ये पात्रता का बहुत अच्छा गुण है, पात्र मुमुक्षु का सरलता ये सबसे अच्छा गुण है। सरलता होने से कई प्रकार के दूसरे दुर्गुण भी नहीं आ सकते, छूट जाएंगे। इसलिए अपना सरलता पर तो थोड़ा एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है कि सरलता में क्या क्या फायदा है और असरलता में क्या क्या नुकसान है। सरलता वाला नहीं पड़ा? अरे बात तो बहुत चली है, होगा नहीं आपके पास
क्या? मुंबई
है,
मुंबई
मुंबई के लिए तो फिर तो हमको हमारे ग्वालियर वाले ने छुपा लिए थे, मुंबई वाले ने छुपा लिए थे। बड़ा कागज करीब 20 मुद्दे हैं उसके, 20 मुद्दे हैं। थोड़ा ध्यान रख करके कहीं से अपने तो सब वहाँ परिचय वाले के पास तो सब है, मान लेना किसी से
मंगा दे मंगा
दे। इरादा जी का भी बोला है तो जिक्र कर दे, सरलता वाला ले आना है। ये फीके पड़ने लगते हैं और अपना दोष देखने के प्रति चित्त बल जाता है, झुक जाता है। हिंदी में बलना कहते हैं, ये भी एक सरलता का लक्षण है। अपना दोष को देखना, विचार करना नहीं लिखा है, अपना चलते हुए दोष को देखना, ऐसा बार बार चित्त में आ जाता है। सावधानी चित्त में नहीं है, सावधानी हो जाती है। उसमें दो मुख्य फैक्टर है दोष देखने में, कि एक तो सरलता है, सरलता होगी तो अपना दोष देखेगा, वक्रता होगी तो दूसरा कोई दोष दिखाएंगे तो उस पर क्रोध आ जाएगा। क्या तुम कितने हम भी खबर, हमको पता है तुम कैसे हो, तुम हमारी बात करते हो तो हम तुम तुम्हारी करेंगे, ये बात हो जाएगा। एक तो सरलता का और दूसरा उसको दोष को निकालने का अभिप्राय हो जाता है, तब ही वो दोष देखने को लगता है कि मेरे दोष को पकड़ के मुझे, जैसे जैसे दोष मेरे में होते हैं सब मुझे टालना, माफ करना है, दोष से निवृत्त हो जाना है। और सबसे अच्छी बात उसमें वो है कि इतनी जागृति हुए बिना चलते हुए दोष को आदमी नहीं देख सकता, कोई मनुष्य नहीं देख सकता।
बराबर,
हाँ, कोई दूषित परिणाम हो जाए बाद में उसका ख्याल आवे वो अलग बात है, वो अलग बात है, इसमें इतना फायदा नहीं होता है। लेकिन चलते हुए दोष को तो जागृति हो, जो जागृत है दोष टालने के लिए वो जागृत है, वही दोष देख पाएगा।
बार बार अपना ऐसा आता है और
दोष देख पाएगा,
देखना और विचार करना वो ऐसा
तो अलग
बहुत बहुत जगह पर ऐसा बार बार जिगरा आता है, तो इसके मतलब के अवलोकन चलता है, परिणाम में अवलोकन की बात
करते हैं, वही देखेगा।
विचार करना
वाला, विचार करने वाला दिखेगा
नहीं, उसमें कोई दम नहीं,
दम दम नहीं, क्योंकि वो दोष तो चला गया,
फिर क्या
जो हो गया उसमें क्या करने वाले हैं, जो वर्तता है उसको प्रहार करो, जो दुश्मन बन गया उसको तो मार नहीं सकते, जो सामने खड़ा है उसको लाठी मारो, प्रहार तो उस पर करो।
ये सब मतलब एक है, हर परिणाम में जागृति होना मतलब,
और जब वो दोष हुआ उस वक्त आपकी जागृति नहीं थी, इसका मतलब क्या कि आपने मार तो खा लिया, वो मार के चला गया, अब इसके पीछे आप देखते हो कह रहे वो आ गया, वो मार के चला गया, मार के चला गया, क्या फायदा होने वाला इससे, मार तो खा लिया, तो मार के वो चला गया, फिर आपको तो हमको मार दिया, हमको मार दिया, हमको मार दिया, उस वक्त क्या सोए हुए थे
जी,
आपकी जागृति नहीं थी उस वक्त, जागृत मुमुक्षु होता है वो अपने दोष को देखने लगता है। तो एक बहुत सुंदर बात क्या आ गई इधर, कृपालु देव वो कहना चाहते हैं कि जो मुमुक्षु सत्पुरुष को पहचानेगा उस मुमुक्ष में आत्म जागृति पैदा हो जाएगी, ये पहचानने का फल है। अगर आत्म जागृति नहीं आई, अवलोकन चालू नहीं किया, तो अगर सत्पुरुष को भी पहचाना
नहीं, 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 नहीं है।
अगर आत्म जागृति आ गई तो उसकी पहचान नहीं
होगी, उसमें बहुत सा स्टेज है, लेकिन एक वन ऑफ द सिम्टम है, ये वन ऑफ द सिम्टम्स में उसको ले सकते हैं। कितनी बात है,
अनुभव करने की बात है,
क्यों
सिम्टम
जो अवलोकन है अपना दोष देखना है, उसमें थोड़ा भी प्रमाण है, ज्यादा भी प्रमाण है, बहुत प्रमाण है, और कोई सतत देख सकता है उतना भी प्रमाण है, किसी को कम जागृति है, किसी को ज्यादा भी है, किसी को बहुत है, किसी को उतनी जागृति है, कोई सतत जागृत है
जी,
ऐसा भी होता है।
दोष करते वक्त दोष देखा है तो बहुत सारी बात है साइमल्टेनियसली, पर दोष कराया पछी पण एनु पाछळथी पण जो भान थाय तो बीजी वक्त फरी थी ए भूल न करिए एनो पण ख्याल रहे।
એવો વિચાર આવે છે, એવો ખ્યાલ કોઈને રહે છે, પણ એમાં બહુ સફળતા નથી મળતી, એમાં બહુ સફળતા નથી મળતી, તમે ટ્રાય કરી દેજો પ્રેક્ટિકલી, કે ખ્યાલ તમને આવશે કે આવા પરિણામ તો નહીં થવા જોઈએ, ગુસ્સો તો નહીં થવો જોઈએ, આમ તો નહીં થવું જોઈએ, પણ પાછું થઈ જશે, તમને ખ્યાલ આવ્યા છતાંય થઈ જશે, શું કરવા, પાછળ થી ખ્યાલ આવે છે, પીછે સે ખ્યાલ આવે છે, ઉસકા જો અભાવ કરના હૈ વો ઉસકા રામબાણ ઇલાજ નહીં હૈ, ઉસકી એક માઇલ્ડ ઔષધિ હૈ જી, તો ઉતને કામ નહીં કરતી હૈ, રોગ કો મિટાતે નહીં હૈ, મૂળ મે સે રોગ કો મૂળ મે સે નિકાલને મિટાને કી સક્ષમ નહીં હૈ વો, જબકે યે રામબાણ હૈ
જી,
અગર આપકો આત્મ જાગૃતિ હૈ और चलते हुए दोष को साइमल्टेनियसली आपका ज्ञान जागृत हो गया, उसी वक्त तो भरने लगेगा, चोर आया है, वो चोर आया है, तो वो चोर कितना भी तगड़ा होता है, चोर और लुटारे में वही फर्क है कि लुटारा है वो भी एक आदमी है, चोर भी एक आदमी है, दोनों तगड़ा हो सकता है शारीरिक रूप से, लेकिन जो हिम्मत है वो लूटता है, और जिसमें हिम्मत नहीं है वो चोरी करता है, तो चोरी करता है इसका मतलब कि वो ना हिम्मत है, तो जब भी चोरी करने वाले को कोई देख जाता है ना, पकड़ता नहीं है
जी,
अगर देख ही जाता है ना उसको, ये पता चलता है कि वो जग गया, तो भगने लगेगा, वो चोरी करने का छोड़ देगा, उसी वक्त छोड़ देगा, ये हालत दोष की हो जाएगी, क्योंकि ये चोर है, लुटारा नहीं है
जी,
आपने देखा वो भगने लगेगा डेफिनेटली, ये काम होने वाला है, आप प्रयोग करके देखे, इसका रामबाण इलाज है। कोई कहता है कि हमारा फलाना दोष नहीं मिटता है
जी,
उसको क्या करें, तो इसका ये रामबाण इलाज है, मिटेगा ही मिटेगा, ज्ञानियों ने तो ये अनुभव सिद्ध बात किया है, इसमें कोई शंका की भी गुंजाइश नहीं है। अपना दोष देखने के प्रति चित्त का झुकाव रहता है, चित्त का झुकाव होने लगता है तो झुकाव बढ़ता जाता है, और जब इसमें सातत्य आता है, सातत्य मैंने कहा सतत जब देखने लगता है, तो ये अवलोकन है, ये स्वयं प्रयोजक है किसका? भेद ज्ञान का। जिसको प्रयोगात्मक भेद ज्ञान में प्रवेश करना है और ये प्रयोग नहीं हो पाता है, उसका प्री स्टेज में उसको अवलोकन में आना चाहिए, चलते हुए दोष को देखने का उसकी जागृति आ जानी चाहिए। जब चलते हुए दोष को देखने की जागृति आएगी और अधिक जागृति प्रैक्टिस से हो जाएगी, ये प्रैक्टिस से बढ़ सकती है, रुचि से और प्रैक्टिस से, तो उसकी सातत्य हो जाने से ये वेद ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। परिणमन है, अवलोकन वाला परिणमन वेद ज्ञान के प्रयोग में परिवर्तित हो जाएगा, ये वेद ज्ञान प्रयोजक होकर के स्वानुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल नियत
क्रम
कार्य पद्धति है, ये नियत विधि है, ये इस विषय के उस विधि में लिया है।
आजी
देखना पहला प्रकरण में तत्वानुशीलन वो बात लिया है। उसका चित्त को झुकाव आ जाता है, बी कथा आदि भाव में निरसपना लगने लगता है। बी कथा मैंने क्या? आत्मकथा के आत्मकल्याण की वार्ता से दूसरे प्रकार का जो भी है उसको बी कथा कहते हैं, संसार कथा, बी कथा, राज कथा, पॉलिटिक्स की चर्चा, भोजन की कथा, तो कुछ ऐसे भी कथा अनेक प्रकार के तो बहुत खतर हैं, तो ऐसे बी कथा आदि भाव में निरसपना लगता है, रस नहीं आता है। कभी कभी जो साथ में होने वाले जो हैं उसमें दूसरी दूसरी बातें चल जाती है, उनको रस
नहीं है,
नहीं आता है, या उसको जुगुप्सा भी उत्पन्न हो जाती है, घृणा भी आती है कि ये पंचायत हम क्यों करें, ऐसी पंचायत हम क्यों करें, ये फालतू की बात है, बेकार बातें हैं, इसमें रस लेने से हमको नुकसान होता है, तो हमको उसमें उलझना
नहीं चाहिए।
उसको घृणा भी होती है, जुगुप्सा भी होती है, मतलब ऐसी बातों के एलर्जी हो जाती है। क्या? ऐसी बातों के एलर्जी हो जाती है। जीव को आगे जा करके क्या क्या होता है, एक पहचान होने से क्या क्या होने लगता है, ये पत्र है। ये जीव को अनित्य आदि भावना चिंतव्वा प्रति बल वीर्य स्फुरित होने में जो प्रकार से ज्ञानी पुरुष के समीप में सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणाम से यह पंच विषय आदि के विषय अनित्य भाव दृढ़ करता है, अर्थात सत्पुरुष मिलने पर यह सत्पुरुष है इतना जान करके, सत्पुरुष के जाने पहले जैसा आत्मा पंच विषय आदि के विषय रक्त मैंने रस वाला था, ऐसा रस उसके बाद नहीं रहता, और अनुक्रम से यह रस फिक्का होने पर उस ऐसा वैराग्य जीव में आ जाता है। अथवा करके और भी लिया है, बहुत बात लिया है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, मतलब वाक्य है क्या है कि ये सब अनित्य है, मेरे जितने भी संयोग हैं शरीर से लेकर कुटुंब परिवार से लेकर धन संपत्ति आदि से लेकर जो भी कुछ है, प्रतिकूलता आदि सब, अनुकूलता प्रतिकूलता सब आ जाता है उसमें, वो उसके प्रति अनित्य आदि भावना चिंतन 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 वाक्य प्रति बहुत अनित्यता की चिंतन ना आती। ये सब चार दिन की भी चांदनी
नहीं है।
फिर तो रात अंधेरी होती है लेकिन ये चार दिन की भी चांदनी
नहीं है।
उसके प्रति जो बलवान परिणाम होते हैं, ऐसा चिंतन में जो बलवान परिणाम होते हैं, उस विषय में उसने ज्ञानी पुरुष के समीप में बहुत सी बातें भी सुनी हो। इससे भी विशेष बलवान परिणाम से क्या, अब क्या कहते हैं, ये एक वैराग्य का विषय है। कालिदास ने एक जगह वो बात लिखी है, मुमुक्षु का वैराग्य कभी कभी ऐसा होता है या दिखता है कि ज्ञानी से भी अधिक। ये बात कह रहे हैं, ज्ञानी का इतना नहीं दिखे पर उनका उतना लगे, क्योंकि फोर्स बहुत है इस लाइन में। नया नया आया है तो बहुत फोर्स से आता है। मतलब वो है, इस लाइन की जो कोई वास्तविकता है तो वो है कि वास्तविक रूप से प्रवेश होने वाला बहुत फोर्स से आता है। जिसका प्रवेश काल में फोर्स नहीं है, उसका वास्तविक प्रवेश नहीं है। ये एक खास विशिष्ट प्रकार का लक्षण है, स्पेसिफिक सिम्टम जिसको कह सके, ऐसा एक प्रकार है क्या
जी।
इसका कारण भी है, संसार में जो भी परिस्थिति थी इसके पहले, उनको उसको कंपैरिजन हो जाता है भीतर में, और कंपैरेटिवली उसको क्या समझ में आता है, तो वो इतनी बढ़िया लाइन है, इतना महान मार्ग है, इतना सुंदर मार्ग है, इतना बड़ा लाभ है इसमें, तो फोर्स से वो एंट्री करता है, धीरे धीरे नहीं चलता है, फोर्स से एंट्री हो जाती है। जो भी ज्ञानी हुए हैं इनके भूतकाल को हम देखते हैं तो सामने देखा है, बहुत फोर्स से वो एंट्रेंस जो है बहुत फोर्स से हुआ है। पर वो शुरू से ही ढीला डच होते हैं, उनका ठिकाना नहीं पड़ता है। हाँ, 2 साल 5 साल 25 साल जिंदगी निकल जाती है, पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, चर्चा करता रहता है, विचार करता रहता है, और फिर पछताता है कि अरे कुछ हुआ नहीं, अरे कुछ होता नहीं। ये बात हो जाएगी,
हम बहुत जोर वाला भी कभी कभी ढीला पड़ जाता है।
पढ़ते होंगे जो पढ़ते होंगे, या तो नहीं पढ़ते हैं इसकी बात चलती है। जो ढीले पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे, जो ढीले नहीं पढ़ते हैं इसकी बात कर रहे हैं, उसकी नहीं कर रहे हैं।
पॉजिटिव साइड देखना
है,
पॉजिटिव साइड
नहीं, उसके हम क्यों विचार करें, ऐसा विचार हम क्यों करें। कोई ढीले पड़ जाता है कि हमको ढीला पड़ना है, ऐसा ऐसा विचार से हमको ढीला पड़ना है क्या।
देवालिया ने जो है कि हमारे धंधा थोड़ा हूँ ढीला करूँ।
हाँ, हमारी लाइन में भी बहुत से देवालय निकालते हैं, क्या हम भी निकालेंगे क्या। हम तो ये कहेंगे कि वो मूर्ख था इसलिए देवाला निकाला, हम थोड़े मूर्ख हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, ऐसा कहेंगे। हाँ, बात तो ऐसे ली जाती है। क्या कहा फिर से, अब आपको पूरा भाव जो कृपालु देव का वचन का है वो समझ में आ जाएगा, कि ऐसे जीव को अनित्य आदि भावना की चिंतना प्रति बल्ब वीर्य के स्फूर्णा में, ऐसे प्रकारों में जो ज्ञानी पुरुष के समीप में सुना है, इससे भी अधिक बलवान परिणाम से यह पंच विषय आदि में अनित्य आदि भाव दृढ़ करने लगता
है,
ऐसा हो जाता है। ज्ञानी के पास ऐसी बात सुनिए, इससे भी वो ज्यादा जोर से वैराग्य में आता है। तो बात आती है ना, वैज्ञानिक कोई राजा होते हैं, कोई चक्रवर्ती होते हैं, कोई सेठ श्रीमंत होते हैं, देव होते हैं, तो बाहर में इंद्र होते हैं, उनका विराग तो नहीं दिखता है। उनका विराग नहीं दिखता है तो उनके पास तो कुछ ऐसी आत्म दशा की पूंजी है, मूड़ी है, आत्मदशा की पूंजी है, तो उनको थोड़ा वेस्टेज है, उसका कोई असर नहीं आता है। लेकिन मुमुक्षु ऐसा नहीं सोचेगा, इसका अवलंबन नहीं लेगा, बोलेगा हमारे पास कहाँ, ऐसा खर्च करने के लिए हमारे पास शक्ति कहाँ है, हमारे पास तो बहुत कम शक्ति है, तो जितनी कम है उतनी हम अच्छे लगाए, उसका हम फालतू खर्च नहीं करें। ज्यादा पैसे वाला फालतू खर्च कर सकता है, लेकिन जिसको पैसा कम है वो फालतू खर्च करेगा तो भूखा रहना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, ये बात हो जाएगी। ऐसे ज्ञानी के बराबरी कोई करने जाएगा मुमुक्षु, तो उनके पास तो उतनी ताकत नहीं है जिसकी ज्ञानी को ताकत है, इसलिए वो बहुत बलवान प्रयोग करता है, वैराग्य का प्रयोग भी बहुत बलवान कर लेता है। ऐसा मुमुक्षु को लिया है, ये आत्मा से कैसा होता है, ऐसी बात लिया। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि सतपुरुष को मिलने पर, और यह सतपुरुष है इतना जान करके, सतपुरुष को जानने के पहले जैसा आत्मा पंच विषय आदि पांच इंद्रियों के विषय के प्रति रस वाला था, उसमें रस आता था, उतना रस सतपुरुष मिलने के बाद उसको रहता ही
नहीं।
अगर रहा है तो उसको सतपुरुष मिला
नहीं।
ये बात है, वो सहज होता है, सतपुरुष मिला उसका रिफर्केशन रस के प्रति कितना आया, वो कहना चाहते हैं कि सतपुरुष मिला है तो तुम्हारा रस टूटा कि नहीं टूटा। पंच विषय मतलब क्या, उदय भाव, जो भी उदय भाव है सुबह से उठते हैं, स्नान आदि करने से, खाने पीना, ये साफ साफ सब जो हो रहा है उसमें पांच इंद्रियों का विषय का उदय चलता रहता है, आगे पीछे आगे पीछे चलता ही रहता है। तो पहले जो रस आता था और बाद में रस आया उसमें फर्क पड़ ही जाता है, अगर सतपुरुष का उसको समागम मिला है, सत्संग मिला है, तो उसमें रस फिका हो ही जाता है, नहीं फिका हो जाता है तो उसको मिला नहीं मिला सब बराबर है। उसके बाद इतना रस रहता ही नहीं है, और अनुक्रम से मैंने क्रम क्रमशः यह रस भाव जो है, रक्त भाव है, वो तो अधिक अधिक फीके पड़ने लगता है, ऐसा वैराग्य जीव में आता है। एक वैराग्य के पहलू पर प्रकाश डाला है। वैराग्य में लोग क्या समझते हैं, क्या त्याग कर दे उसी का नाम वैराग्य, क्या हमने वो छोड़ दिया है, हमने वो बात मिठाई छोड़ दिया है खाने का, हमने हम वो नमक नहीं खाते हैं, हम वो नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, उसको यहाँ वैराग्य नहीं कहा है, क्या अपने उदय भाव का रस टूट जाना चाहिए, कहीं उदय में रस नहीं आवे, ये सब मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं है, सभी उदय में वो निरस हो जाए, उसी का नाम मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य है। फिर तो राग का अभाव हो जाता है और बाह्य पदार्थ के ग्रहण करने का विकल्प टूट जाता है, तब ये ज्ञानी की भूमिका का जो वैराग्य है वो आगे होकर के चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, वास्तव में तो पंचम गुण स्थान छोड़ देता है, फिर आगे होता है। ऐसा इसलिए जो भी बाह्य त्याग करते हैं उसको ये देखना चाहिए कि हमारे रस के परिणाम फीके पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, उतना खास दिखना है, क्या उसमें उतना खास दिखना है। अथवा अब तीसरा अर्थ कहते हैं, ये बहुत सुंदर बात किया है 522 में, जो विशिष्ट बात किया है वो तो इस जगह किया है, तो ये ध्यान देने योग्य बात इधर आती है। अथवा करके लिखते हैं, अथवा सत्पुरुष का योग होने के बाद आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है। आत्मज्ञान बहुत बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अनंत काल में नहीं, हमने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, इसलिए बहुत दुर्लभ है। धर्म के क्षेत्र में हमने परिश्रम भी बहुत बहुत किया है, फिर भी आत्मज्ञान नहीं मिला है, इसलिए भी बहुत दुर्लभ है। लेकिन अगर एक सत्पुरुष कोई मिल जाए तो आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है। बहुत दुर्लभ क्या, दुर्लभ क्या, कुछ दुर्लभ
नहीं,
ये गारंटी दी है। चाहिए योग्यता, बाकी ये गारंटी दी है। सत्पुरुष के योग होने के बाद आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है, तथापि कौन सी शर्त है, कब दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ तो कुछ नहीं है, लेकिन कब, अब वो मिलान करने का है, कैसा हमारा हुआ कि नहीं हुआ कभी, ये मिलान करने का है। कब, कि सत्पुरुष के प्रति, उनके वचन के प्रति, और इस वचन के आशय के प्रति प्रीति भक्ति होवे नहीं वहां तक, कहां तक, सत्पुरुष के प्रति, इसके वचन के प्रति, इनके वचन के आशय के प्रति, तीन पद लिया है, भक्ति नहीं लिया है, प्रीति भक्ति ऐसा लिया है। बहुमान तो आता है लेकिन प्रीति भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं होती है। ये बात कृपालु कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है ऐसे बात। जी आवाज नहीं समझाई,
प्रीति भक्ति खोला
एम के वहां आगे से, क्योंकि सत्पुरुष ओळखा है, सत्पुरुष ओळखा है तो सत्पुरुष से भक्ति आ रही नहीं, अत्यंत प्रेम सहित नहीं भक्ति आ रही, अत्यंत प्रेम सहित नहीं भक्ति आ रही, तो प्रेम ना बेहतर ऐसा मुख्य है, बाकी तो अनुभव ना विषय से, पर एक तो प्रेम सेक्रिफाइस करे छे, एक तो ये योग सहन करतो नथी, आ बे ना मुख्य आशा छे, शू बाकी तो अनुभव ना विषय छे। એટલે એક સત્પુરુષ ના વિષય એને એ પ્રકાર છે, એમના વચનો પ્રત્યે પણ બહુ પ્રેમ આવે છે। ઘરમાં વર્ષ દોઢ વર્ષનો બાળક થાય અને એક અક્ષર બોલતા શીખે, માં પા પપ્પા મમ્મા થોડું બોલતા શીખે, રાજી રાજી થઈ જાય છે ઘરમાં બધા, હે આજે મને બોલે બોલો, આજે તો બોલવાનું શરૂ કર્યું, જીભ આવી ગઈ એમ કે, શું બોલે તો હાવ તો થોડું ઠેકાણા વગર ન બોલે, ભાષા કેવી હોય, સમજાય ભી બાળકની ભાષા ન હોય પણ પ્રિય કેમ લાગે છે, અન્યત્વ નહીં રહેતા હે, અનન્યત્વ હૈ, સત્પુરુષ કે પ્રતિ અનન્ય પ્રેમ હોતા હૈ, તો ઉસકી વાણી કે પ્રતિ ભી પ્રેમ આતા હૈ, उसके प्रति भी प्रेम आता है, उसकी भाषा के प्रति भी प्रेम आता है, और इसके वचन का जो आशय है वो तो आत्मा को परम कल्याण भूत अमृत जैसा आशय है। वचन वचनामृत क्यों कहते हैं, सत्पुरुष के वचन को हम वचनामृत क्यों कहते हैं, जन्म मरण का नाश करने का निमित्तत्व इसमें है। उनका जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन का उसको पता है, जिसको ऐसा प्रीति भक्ति नहीं होता है उसको मूल्यांकन नहीं हुआ है, न सत्पुरुष का मूल्यांकन हुआ है, इनके वचन का मूल्यांकन नहीं हुआ है, इस वचन के आशय का भी मूल्यांकन नहीं हुआ है कि हमारा आत्म कल्याण होगा तो क्या हो जाएगा, कि संसार के सभी दुख हमारे खत्म हो जाएगी, जन्म के मरण के टेंशन के बाधा के पीड़ा के रोग के अकस्मात केस, चोरी के, लूट के, भय के, सब केस खत्म हो जाएंगे, एक भय नहीं रहने वाला, भय नाम का शब्द डिक्शनरी में से कैंसल हो जाएगा, निकल जाएगा। और जो भय से होने वाला दुख की परिणति जो है, जो लेकर हम अनादि से चल रहे हैं, वो छूट जाएगी, दुख की परिणति छूट जाएगी। प्रारंभ में तो यही बड़ा काम होगा। तो सत्पुरुष मिलता है, इनका वचन मिलता है, लेकिन इसका डीवैल्यूएशन हम करते हैं, क्या मूल्यांकन नहीं करते, तो क्या करते हैं, अवमूल्यन कर लेते हैं उसका, अवमूल्यन करते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपराध है, ऐसी गंभीरता हमें आनी चाहिए। जब तो कोई काम करने की सूझ आएगी कि ये अपराध हमें करना चाहिए, प्रीति भक्ति नहीं होवे वहां तक जीव में आत्मविचार भी उदय आने योग्य नहीं है, उसको आत्मा का सही रूप से विचार भी नहीं आएगा, आत्मा का कल्याण करने का भी सही रूप से विचार नहीं है। और ऐसे जीव को सत्पुरुष का योग हुआ है ऐसा कहना भी कठिन है, और ऐसा उनको भाषित भी नहीं होता कि मुझे सत्पुरुष मिला है, वो बात उसको भाषित
नहीं होती।
ठीक है, जैसे दूसरे दूसरे लोगों का मिलना जुलना होता है, ऐसा इनका भी मिलना जुलना हो गया, बस बात खत्म। तो उनको लगता भी नहीं है कि मुझे सत्पुरुष मिला है, और उसको मिला है ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात कहने लायक
नहीं
रही। ये बात उन्होंने बहुत सुंदर लिखी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति सत्पुरुष मिलने से कुछ दुर्लभ नहीं है, प्राप्ति हो ही जाती है, लेकिन ऐसा होता है इनको होती है, दूसरे को
नहीं
होती है, उनको सत्पुरुष मिला ही नहीं, फिर कहाँ से होगी आत्मज्ञान की प्राप्ति, ऐसी बात है। हाँ, और ये की नहीं जाती, आर्टिफिशियल हो नहीं सकती, ये तो जो होती है वो बहुत नेचुरल होती है, बहुत स्वाभाविक होती है, क्यों कि उसका ये मूल्यांकन है। जैसे हमारे घर में एक पत्थर जैसा कुछ टुकड़ा पड़ा था, जो बच्चे लोग खेलते थे खिलौना जैसा, अब कोई हमारे परिचित समझे आए दोहरे थे, उसका ध्यान गया, अरे अरे ये क्या है, ये कोई खिलौना नहीं है, इसमें से इतना इतना बड़ा हीरा बन सकता है, रत्न का कोई रत्न पत्थर है, तो बच्चे को खेलने को देंगे, बोले कि एक इतनी भी उसमें कमी हो जाएगी, कांकरी भी खिल जाएगी इसमें से, तो लाखों का फर्क पड़ेगा, कितना इसकी कीमत में लाखों का फर्क पड़ेगा, फिर कौन देगा उसको खेलने के लिए, कितनी सावधानी आएगी, और घर में तिजोरी नहीं होगी तो तिजोरी ले आएगा और उसमें रखेगा, क्या करें। इतनी सावधानी आती है क्योंकि उसका मूल्यांकन समझ में आया है, मूल्य समझ में आया, खुद जोरे होता तो बात कोई दूसरी हो जाती, दूसरे के कहने से उतना उसको सावधानी आ जाएगा। तो आपने भले सत्पुरुष को नहीं पहचाना, लेकिन दूसरे कहने से वो ये गुरुदेव थे हमारे, ये फलाने थे, तो इतनी सावधानी आई कि नहीं आई, ये देखने के बाद सावधानी आ जाती, तब तो आत्मज्ञान दुर्लभ नहीं है, अगर ना आत्मज्ञान अति अति दुर्लभ है, अनंत काल में नहीं पाया है। जीव को सत्पुरुष का योग होने से आत्मकल्याण के अर्थ आत्मकल्याण के लिए था थे जितने भी प्रयत्न थे वे सब निष्फल थे, वे सब बिल्कुल उल्टे थे, निष्फल थे। उसमें कुछ आत्मकल्याण हुए ऐसी बात ही नहीं थी। ये कंपैरिजन उसको हो जाएगा, भूतकाल में मैंने ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है, लेकिन आत्मकल्याण होने का कोई कारण ही नहीं था। ऐसे तो धर्म के क्षेत्र में आते हैं वो तो आत्मकल्याण के लिए ही आते हैं, पुण्य और पुण्य के फल के लिए आते हो, मान सम्मान के लिए आते हो, इनकी तो चर्चा भी हमको नहीं करनी है, लेकिन कोई भावना लेकर आते हैं कि चलो हमारा आत्मकल्याण हो जाए इसलिए हमें जाना है। वो बराबरी करता है, कंपेरिजन कर लेता है कि अभी तक हमने जो कुछ किया है वो वास्तव में आत्मकल्याण के लिए किया ही नहीं है। वो निष्फल थे। कैसे निष्फल थे? कि लक्ष्य बिना के बाण के जैसे थे, फायरिंग इन द डार्क। क्या अंधेरे में गोली छोड़ता है, कहाँ छोड़ता हूँ उसको पता ही नहीं है, किसके पर छोड़ता हूँ उसको कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे जिसको पूर्णता का लक्ष्य है उसी के सब प्रयत्न जो है वो आत्मकल्याण के लिए होते हैं। जिसको पूर्णता का लक्ष्य नहीं है वो लक्ष्य बिना के बाण के तरह है, तो उनके जो प्रयत्न है वो आत्मकल्याण के लिए होते ही नहीं है। और वो तो सीधा न्याय है कि जो प्रयत्न है वो तो साधन है, तो जिसको साध्य निश्चित नहीं हुआ है इनको साधन है, इसके परिणाम को इसके प्रयास को साधन कैसे कहें कि साधन हो ही नहीं सकते। तो उनको ये मालूम पड़ जाता है कि ऐसा कभी मैंने पूर्ण शक्ति का ध्येय है, लक्ष्य है, वो किया ही नहीं था, तो मेरे सब प्रयत्न है वो आत्मकल्याण के लिए थे ही नहीं। या तो सब कुछ किया, कुछ ना कुछ तो किया ही होता है, अपने अपने संप्रदाय में जो है कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं लोग, लेकिन उसमें सब अंधेरे में ही चलने की बात थी। परंतु अब सत्पुरुष का अपूर्व योग हुआ है, क्या लगता है उसको कि मुझे अब सत्पुरुष का अपूर्व योग हुआ है तो मेरे सर्व साधन सफल होने का हेतु है। एक कारण मुझे बहुत बढ़िया कारण मिल गया है, मेरा निर्धार भी हुआ है, मेरा एक आधार भी मिला है कि जहाँ जहाँ मुझे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी मुझे मिल जाएगा। और उनका जो लक्ष्य है उसके प्रति इसके परिणाम जो हैं वो लगने चालू होने जाएंगे, ये बात तो उनको होती है, तो उनको विश्वास आता है। और लगता क्या है कि एक अपूर्व योग मुझे हुआ है। ऐसे तो अनंत काल में सत्पुरुष, निर्ग्रंथ गुरु, भावलिंगी संत और तीर्थंकर का योग भी अनंत बार हुआ है। सबसे कम योग हुआ है तीर्थंकरों का, इससे ज्यादा हुआ है भावलिंगी मुनिराज का, और इससे ज्यादा हुआ है सत्पुरुष का, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा होती है। तीर्थंकर की संख्या बहुत कम होती है, मुनियों की संख्या इससे ज्यादा होती है, ज्ञानियों की संख्या इससे ज्यादा होती है। ये सब हो चुका है, फिर भी पहचानते हैं तो उसको क्या लगता है कि ये अपूर्व योग हुआ है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है योग, क्योंकि पहचाना नहीं था। ये बात अपूर्वता में ली जाती है और उसको ऐसा भाषित होता है, लगता है कि ये अपूर्व हुआ है, पूर्व में कभी ऐसा हुआ। अब ये कहां से लगा, ऐसा क्यों लगा और कहां से लगा, ये विचार करने योग्य बात है कि उनकी जो वर्तमान आत्म जागृति है और हर परिणाम जो आत्म कल्याण साध्य के प्रति चालू हो गए, साधन रूप होने लगे, इससे उनको प्रति के आती है, विश्वास आता है, तसल्ली हो जाती है कि ये कोई अपूर्व आत्म जागृति है और इसका यही निमित्त है, तो ये मेरा अपूर्व योग है। तो उसको तीरने में कोई आपत्ति, कोई विटंबना होने वाली नहीं है, वो तिर ही जाएगा निश्चित रूप से, संसार को वो तिर जाएगा। ऐसी बात है, पत्र तो थोड़ा लंबा है, आधा चला है आधा बाकी है, अभी का शेष पार्ट मान मिलेंगे। कल्याण के लिए ये सभी बिल्कुल निष्फल थे, क्योंकि आत्मकल्याण कैसे करना वो तो मैं जानता नहीं था। और संज्ञा से मैंने कल्पना की थी, ऐसा करूं तो आत्मकल्याण, ऐसा करूं तो आत्मकल्याण, ये कल्पना हुआ करती थी, और जैसा मैं चाहता था वैसा कर लेता था। और जो लक्ष्य बन होना चाहिए वो लक्ष्य नहीं था। यहां संकेत है, लक्ष्य का संकेत है, आत्मकल्याण के लिए लक्ष्य पहले होना चाहिए। तो गुरुदेव ने सूत्र दिया कि पूर्णता के लक्ष्य से ही वास्तविक शुरुआत होती है, इसके लक्ष्य बिना वास्तविक शुरुआत नहीं होती। ऐसे लक्ष्य बिना कोई बाण फेंकता है अंधेरे में, ऐसी बात है, क्योंकि जिसका साध्य का ठिकाना नहीं उसका साधन का ठिकाना हो ही नहीं सकता। साध्य साधन सापेक्ष है, बिना साध्य साधन नहीं होता। तो बिना साध्य कोई साधन करता है तो ये साधन नहीं रहता, वही साध्य हो जाता है। जैसे हम कहेंगे कि मुमुक्षों को तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, महापुरुषों के वचनामृत का परिचर्यन करना चाहिए, ये बात तो आती है सामान्य तौर से, और लोग करते भी हैं, फिर भी जब साध्य निश्चित नहीं हुआ है, लक्ष्य में नहीं है पूर्णता, तो ये साध्य का जो स्थान है वो साधन खुद साध्य का स्थान ले लेगा। हम एक घंटे करते हैं तो चार घंटा करने लगो, छह घंटा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो करो, तो ये भी साध्य हो जाता है। और दूसरी क्रिया कोई करता है तो वही साध्य हो जाता है। जैसे कोई भक्ति करता है, एक घंटा करो, दो घंटा करो, चार घंटा करो, छह घंटा करो, कोई ध्यान करने लगता है तो ऐसा करने लगता, खूब करो, खूब ज्यादा, तो ये साध्य नहीं रहता है, तो साधन नहीं रहता है, वही साध्य हो जाता है, और पता ही नहीं चलता कि इसमें साधन साध्य क्या है, उनको खुद को पता नहीं चलता है। परंतु अब सत्पुरुष का अपूर्व योग हुआ है,
तो मेरे सर्व साधन सफल होने का हेतु सत्पुरुष का योग अपूर्व हुआ है ये लगना चाहिए और वो अपने परिणामों से लगना चाहिए कि मेरे परिणाम भी कोई अपूर्व हो ही रहे हैं। इसलिए इस योग को अपूर्व कहने में आया है। वैसे तो अनंत काल में अनंत देर योग हुआ है, अपूर्व कैसे कह सकते हैं, लेकिन हमारे हमारा लक्ष्य हो करके हमारे परिणाम कुछ ऐसे हुए कि जैसे कभी वे ही नहीं थे, ऐसी एक अपूर्व आत्म जागृति आती है। आत्मकल्याण के लिए जीव अपूर्व प्रकार से अग्रेसर होता है, तो कहने में आता है कि योग बिल्कुल अपूर्व हुआ है। और विश्वास भी आ जाता है, प्रतीति भी आ जाती है कि अब हमारा आत्मकल्याण होगा ही, इसमें कोई हमें शंका नहीं, निशंक आ जाती है। भाषा कभी योग भी ऐसा मुमुक्षु को तो जो बराबर यथार्थ मुमुक्षुता में आ जाता है, तो उनको मोक्ष का फणकार आता है भीतर का
फणकार
में मनकार क्या करें ऐसा होता है भीतर में से ऐसा लगता है अभी मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये आत्मा अभी संसार में रहने वाला
नहीं
है, ऐसा उनको भीतर में से
छोटे
काम छोड़ने में तो कोई बात बनने नहीं देता, हमको तो भंकार आगे से आते था ऐसा ही कुछ नहीं होगा, ऐसा हो जाता है मुमुक्षुता में ऐसा है। तो ध्यान दशा के तो बात ही अलग है, मुमुक्षुता में भी स्थिति आती है, सही मुमुक्षुता प्रकट होती है, ये सब अपूर्व है। लोक प्रसंग में रह करके उतना मात्र पर चला था, हम आगे लेते हैं। लोक प्रसंग में रह करके जो निष्फल निर्लक्ष साधन किए वह प्रकार से अब सत्पुरुष के योग से वह प्रकार से अब सत्पुरुष के योग में न करते, अवश्य अंतरात्मा में विचार करके दृढ़ परिणाम रख करके जीव को इस योग को वचन को विशेष जागृत होने योग्य है, जागृत रहने योग्य है, और वह प्रकार भावना में लेकर के जीव में जीव को दृढ़ करना कि जैसे जिससे उसको प्राप्त योग एफल मैंने निष्फल न जाए, और सर्व प्रकार से यही बल आत्मा में वर्धमान करना वृद्धिगत करना कि इस योग से जीव को अपूर्व फल होने योग्य है। आगे और भी वचन देते हैं, बहुत लंबा वचन दिया है, इस पर थोड़ा और विचार करें। क्या कहा कि लोक प्रसंग में रह करके जो निष्फल निर्लक्ष साधन किए, लक्ष्य बिना का साधन किया, ये सब निष्फल गए। क्यों? लोक प्रसंग में रह करके, लोक संज्ञा में रह करके, क्यों कि ये तो मनुष्य करता है तो कुछ न कुछ इसका ग्रुप तो होता ही है, जैसे ये कृपालु देव का अनुयायी वर्ग है, गुरुदेव का अनुयायी वर्ग है, ऐसा नहीं होता तो पहले संप्रदाय था, हमारे संप्रदाय, तो उस
संभव में ये लोक प्रसंग है, ये धार्मिक जनसमूह है वो भी लोक प्रसंग है। लोक प्रसंग इसलिए उसको कहते हैं कि उसमें भी कोई गिनती होती है, व्यक्तिगत गिनती होती है कि फलाना तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा है, कोई ना कोई हरेक का अलग अलग स्थान होता है, खास प्रकार की तो इसकी वैल्यू होती है, क्रेडिट होती है, डिसक्रेडिट होती है, कुछ ना कुछ स्थान होता है। ये जो गिनती होती है जब, तो उनका जो भान रहना है कि इस जिस जन समूह में मेरी ऐसी गिनती होती है उसमें रह जाना, ये लोक प्रसंग में रह गया और ये निष्फलता का कारण है। उसी का नाम लोक प्रसंग है, उसी का नाम लोक संज्ञा भी है, उसी का नाम लोक वृत्ति भी है, लोकवृत्ति भी उसको ही कहते हैं, लोक संज्ञा भी उसको ही कहते हैं, लोक प्रसंग भी उसको ही कहते हैं। इसी से इसलिए कह रहे स्वतंत्र रहना, क्या
स्वतंत्र,
स्वतंत्र रहना, किसी से कोई लेना देना नहीं, फिर गिने तो वो जाने, नहीं गिने तो वो जाने। हम तो हमारे रास्ते पे चलते हैं, गिनेंगे तो सही लोग, जो लोग संपर्क में आएंगे वो गिनती तो करने लग जाएंगे, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में वो बात कहीं भी होनी नहीं चाहिए। हम हमारे रास्ते पे चलते हैं, स्वतंत्र रूप से चलते हैं, हमारा तो हमारा प्रयोजन से ही मतलब है, इसके अलावा हमारे कोई मतलब
नहीं।
तो लोक प्रसंग में रह करके निष्फल साधन किए थे, क्योंकि लोक प्रसंग में रह करके किए थे, ये सब निष्फल है। तो हमें तो अनुभव तो होगा अपना अपना अगल बगल के लोगों के बीच में, ये निकाल देने की बात है। और निर्लक्ष्य मैंने पूर्णता के लक्ष्य बिना जो किया था, ये भी निष्फल है। ऐसे प्रकार से अब सत्पुरुष के योग से नहीं करते हुए, सत्पुरुष का योग मिला तो उस प्रकार में हमें जाना नहीं है, इस प्रकार से नहीं करना, नहीं करते हुए अवश्य अंतरात्मा में विचार करके, ऐसा पूरा विचार करके, ये विचारण पड़ा है कि हमारी निष्फलता के कारण थे, उस कारण हम अभी रहने देंगे
नहीं,
अवश्य नहीं रहने देंगे, इसकी दृढ़ता आ गई है। अंतरात्मा में विचार करके, देखो ऊपर ऊपर से विचार करके नहीं लिया, अंतरात्मा में विचार करके, भीतर में उसकी मक्कमता दृढ़ता अंतर में शांति निष्फल हो गए। इसलिए ऐसा योग मिला है और हम निष्फल हो जाए क्या, क्यों निष्फल होंगे, ऐसा दृढ़ परिणाम रख करके जीव को इस योग के विषय में जागृत होने योग्य है, योग के विषय में, योग में भी जागृत रहने योग्य है और वचन में भी जागृत रहने योग्य है। क्या योग मिला है तो उसमें पूरी सावधानी से चलना है, और वचन मिलते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी सावधानी है, जागृति है कि हम हमारे आत्मकल्याण के रास्ते पे ही चलते हैं और जगह हमें नहीं चलना है। जागृत होने योग्य है, जागृत रहने योग्य है, दो वचन लिखे हैं, जागृत होने योग्य है, जागृत रहने योग्य है, और ऐसे प्रकार ऐसे ऐसे प्रकार को भावना में भा करके जीव को दृढ़ करना,
आत्म कल्याण को में अग्रसर होने के लिए जीव को दृढ़ करना, जिससे यह प्राप्त योग एफल यानी निष्फल न जाए। अब ये प्राप्त योग को हमें निष्फल जाए ऐसा होने दूंगा नहीं, इतनी दृढ़ता आ जाती है कि अनंत काल से ये अपूर्व मौका मिल गया है, अब तो पूरी सावधानी से, पूरी जागृति से, पूरा उद्यम से, पूरी शक्ति से काम लेना है और अपना काम कर ही लेना है। और सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से कहो या सर्व शक्ति से कहो, सर्व उद्यम से कहो, यही बल आत्मा में वर्धमान करना। दिन प्रतिदिन हमारा बल वृद्धिगत होना चाहिए, हमारी भावना वृद्धिगत होनी चाहिए, इसमें पीछेहट हमें करनी नहीं। यही बल आत्मा में वर्तमान करना कि इस योग से जीव को अपूर्व फल होने योग्य है। ऐसा योग बना है कि हम मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाएंगे। उसकी जो कीमत है वो ध्यान में है, लक्ष्य में है, तो फिर कहीं गड़बड़ होने वाली नहीं। बल इसीलिए आता है कि बहुत उसका बड़ा फल है। कृपावली और जगह भी लिखते हैं कि एक सत्पुरुष को पहचानने का फल निर्वाण पद है, सम्यक दर्शन नहीं लिया है, निर्वाण पद लिया है। क्यों? तो सम्यक दर्शन तो रास्ते में आता है, पहुंचना तो वहां है, लक्ष्य तो वहां है, पहुंचना। अनंत काल में न्यायी जीव ने भूल खाई है, देवगुरु शास्त्र को माना है, सत्पुरुष को नहीं माना। दिगंबर लोग क्या कहते हैं और तो सब तो फिर गड़बड़ी बहुत है। दिगंबर में क्या है कि देवगुरु शास्त्र सही है, देव वितराग देव है, प्रतिमा जी में प्रतिष्ठा करते हैं, वो तो रहे नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा जीवन तो स्वामी तो नहीं रहे, गुरु की भी करीब करीब ऐसी स्थिति है, लेकिन निग्रंथ गुरु को ही मानेंगे, सग्रंथ को नहीं मानेंगे। और शास्त्र भी पूर्वाचार्यों के जो है वो सही है, लेकिन सत्पुरुष की बात आती है तो अच्छे अच्छे विद्वान उसमें गड़बड़ कर देते हैं। सत्पुरुष के विषय में पूरे दिगंबर संप्रदाय में कुछ समझ नहीं आ सके, ये हालत है। इसमें क्या गुरुदेव को अनुसरण करने वाले हमारे जो विद्वान है दिगंबर विद्वान, वो भी सत्पुरुष के विषय में उसको जो महत्ता आनी चाहिए।
सत्पुरुष नहीं आते उसमें,
वो लोग कोई बात में समझते ही नहीं, उसको कोई कीमत ही इसकी नहीं है, तो अविरत सम्यक दृष्टि थे, ऐसे नियमी थे, ऐसे ऐसे बोलते हैं क्या? सब मालूम है उनको, सब मालूम है उनको, नहीं यार ये सब को दिखो रहा है
हमें प्रत्यक्षता ऊपर तो ध्यान नहीं थी,
बिल्कुल नहीं। सत्पुरुष में जो प्रत्यक्ष योग शुरू कह रहा है तो वो तो बिल्कुल खबर नहीं है। हमारे हीरालाल जी की बात करता हूँ, दिगंबर है, गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब वो धन्यावतार हिंदी में प्रकाशित हुआ ना, वो हिंदी आत्मधर्म के ग्राहक थे, उनको किताब भेंट संघर्ष से मिलती थी, तो उनके सगे हैं अशोक नगर में, गुना अशोक नगर, गुना मध्य प्रदेश में, उनकी बुआ जी के लड़के अपना फिर बाकी बुआ जी करीब करीब उम्र के हैं,
और फील्ड वर्कर भी है अपने काम कार्य करने में, कार्य कार्य कर जैसा आदमी है, मिला हूँ मैं उसको, आते थे फोन बढ़ाते थे, तो उसका चिट्ठी आया ये किताब मिली है, लेकिन ये ज्ञानी पुरुष के विषय में, ज्ञानी के संबंध में इतना ज़्यादा गुरुदेव ने बोला है। गुरुदेव ने क्या अपने लिए कुछ नहीं बोला, अपने लिए तो कोई सत्पुरुष नहीं बोलता है, कृपा गुरुदेव भी अपने लिए नहीं कहते हैं, लेकिन उनके उपस्थिति में तो दूसरे कोई सत्पुरुष नहीं थे तो वो अंगुली निर्देश करे, जबकि गुरुदेव ने कर दिया। गुरुदेव ने मालूम पड़ गया कि हमारी आयु अब ज़्यादा बाकी शेष नहीं रही है, और मुमुक्षों को अगर कोई सत्पुरुष के पास जाना है तो ऐसा करके जो उन्होंने ऐसे प्रसिद्ध तो थे ही शुरू से कई साल से, लेकिन खुद थे और खुद बहुत प्रभावक थे तो उतनी बात नहीं करते थे, लेकिन जब उनको आवश्यकता लगी तो वो उनकी प्रशंसा के लिए जो कुछ बोले तो उस विषय में लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। ये एक परिस्थिति खड़ी होती है कि सत्पुरुष के प्रति जैसे परिणाम होने योग्य है ऐसे परिणाम के लिए अगर कोई महापुरुष कहता है तो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। दूसरी सब बात माने, सिद्धांत माने, ये बात को नहीं माने जो इनके कल्याण की है वो बात नहीं माने, तो उन्होंने कुछ मृत बात लिख दी, कुछ मृत बात लिख दी, कुछ को दिया था, देखो ये चिट्ठी आई है ऐसा लिखते हैं, और उनको ये भी लिखा कि आप लोग कुछ ऐसे ऐसे ही प्रकार के प्रवृत्ति में भी लगे हैं इसलिए भेज रहे हैं, ऐसी पत्रिका भेज रहे हैं, ऐसे पुस्तक भेज रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति में लगे हैं, उन लोग को ये बात बैठती नहीं है, छूट नहीं होती है, हम तो ठीक नहीं मानते हैं, ऐसे तो पढ़ लिया, पढ़ करके रख दिया चिट्ठी को, रखते रखते मैं बोल दिया कि बेचारा क्या करे, प्रत्यक्ष योग का तो समझ नहीं है इस लोगों को, उन लोगों को तो मैं प्रत्यक्ष योग का कीमत नहीं है ये क्या बात है। देखो हमारे साथ तो कई साल से थे, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष योग के विषय में वो लोग समझते नहीं, इसका मतलब क्या है। तो ज्ञानी का प्रत्यक्ष योग आत्म कल्याण में कितना निमित्त होता है उनसे वो इस प्रकरण से ये लोग अनजाने हैं, तो इनकी क्या बात करूं मैं तो मेरी करता हूँ, जब से बोले मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ध्यान ही नहीं गया है, बस वहां से वो इस प्रकरण में उन्होंने बहुत प्रश्न किए। जब जब हम निवृत्ति क्षेत्र में जाते थे उस विषय पर बहुत प्रश्न चलता था, रमेश भाई वगैरह कलकत्ता से आते थे वो भी इतने अनजाने थे, इनके तो घर की बात थी फिर भी कि प्रत्यक्ष योग का महत्व क्या होता है, वो बात से तो वही अनजाने थे, वही दिगंबर मूल बहुत बातें चली, बहुत बातें चली, फिर कृपालुदेव के वचन मिले, तो कृपालुदेव के वचन पर श्रद्धा, लेकिन उनका रहस्य तो मर्म तो समझे नहीं, उसका मूल्य तो समझे नहीं, तो मुझे सब टैली किया, ये प्रकरण तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो अपने निधान दर्शन में दूसरा प्रकरण तो उन लोगों के आग्रह से लिखा है। वास्तव में तो एक ही प्रकरण विस्तार से लिखने के लिए बहुत आग्रह था उनका सबों का, तो दो प्रकरण तो वैसे लिख दिए मैंने आगे पीछे वाला, मूल बात तो वही लिखने के थे, एक यही बात पर ध्यान चला जाए तो भी तो दूसरी बात हो जाती है, अगर इस विषय पर ध्यान नहीं गया तो सब कुछ जाना नहीं जाना सब चौपट होने वाला है। अनुपूर्वक पढ़कर के भी सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग का महत्व नहीं आया है, इसलिए सत्संग का महत्व नहीं आया है। ये दोनों निमित है। सत्पुरुष का योग मैंने सत्संग, जब इनका व्यक्ति का और व्यक्ति के योग प्रसंग का महत्व नहीं है, ये जब निमित की भी समझ नहीं है, इसको उपादान की समझ कहां से होगी। निमित्त तो एक स्थूल विषय है, चर्चा तो हम सूक्ष्म तत्व की करना चाहते हैं, और स्थूल विषय में हमारी मति बिल्कुल अंधी हो जाती है। तो सूक्ष्म विषय में हमारी मति काम करती है, ये बात कहां से आ सकती है। इसको निमित्त का विवेक नहीं, उसको आत्मा का भी विवेक हो ही नहीं सकता। ऐसी बात है, जिसको मालूम पड़ा कि मुझे रोग है और वो डॉक्टर का वैल्यू नहीं समझता है, तो उसको रोग है वही पता नहीं है, और रोग मिटाने का इसका भाव भी नहीं है, इरादा भी नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती। ऐसी बात
હમણાં જે વાત કરી કોના માટે કહી એમને ખ્યાલ નથી
આવ્યો, એટલે ગુરુદેવ વિશે હતી કે સોગંદ વિશે કે બંને વિશે હતી,
એટલે
વાત પૂરી નહીં આવી ને, નામ ને આવ્યું એટલે
વાત બેન છે વચન ગુરુદેવ કે મોસે નીકળે હુએ છે, તો ટેપ મેં થોડા ઉતર જાયગા, કોઈ
વાત વાંધો નહીં, કરના છીએ, પછી પછી ક્યાં તો રાખવું પડશે ક્યાં તમારે,
ક્યાં વાત આપી કુછ બેનશ્રી કા વિરોધ ચલા, સત્પુરુષ કા વિરોધ ચલા, હમારે હમારે ભાઈઓ ને उस विरोध को शांत करने के लिए गुरुदेव ने बेंचली के लिए क्या बोला है, उसको एक छोटी सी किताब बना करके सबको भेंट, उस पर भी भेंट देने के लिए, तो उन लोगों ने विरोध और बढ़ाया और बढ़ गया विरोध। रमेश भाई को जयपुर के शिविर अटेंड करके भावनगर आए निवृत्ति के लिए, तो उनके दिमाग में भी वही बात थी, क्योंकि जिस माहौल में जाता है करीब करीब वही साइकोलॉजी बन जाते हैं। ये सत्पुरुष का योग का महत्व क्यों ये लोग नहीं समझते हैं, हम बेहद श्रम बिल बुलाएंगे 15 दिन के लिए, बहुत चर्चा वहां चली, सत्पुरुष का महत्व क्या है, प्रत्यक्ष योग का महत्व क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय में थोड़ा वजन है इधर कृपालु देव का, कि इस योग से जीव को अपूर्व फल होने योग्य है ऐसा लगना चाहिए। अपूर्व मैंने उनका संसार से निविड़ा कर देता है, ऐसी एक जबरदस्त बात रही है, और बिना सत्पुरुष के योग, योग बिना कभी किसी का संसार मिटा ही नहीं है, मिटने का संभव ही नहीं है, पावे नहीं गुरु गुरु बिना, ये अनादि स्थित, ये वस्तु स्थिति है, तो उसको ही उड़ावे, उसका ही विरोध हो जाए, तो ये तो मोक्ष मार्ग को खत्म करने की बात है, सारा मार्ग को ही खत्म करने की, उन मार्ग में जाने की बात है ये बात। तो काफी इस पर हमने कृपालु देव के वचनामृत के पत्र को लेकर के बहुत सी बातें हमने सोनगढ़ के अपने स्वाध्याय में भी समाज में ये बात कही, लोगों को भी कही, तो कुछ परिस्थिति में फर्क पड़ा, लोग भी समझने लगे कि बात कोई है, ऐसी कोई बात है, ये अपने ही नवाए मुझे माने लगे सोनगढ़, उन्होंने अपना ज्ञानामृत पढ़ा जो मेरा संकलन है कृपालु देव के वचनामृत का छोटा सा, तो आपने तो बहुत इस बात को खींची है, इधर खींची है बहुत, मैंने कहा अभी ध्यान जाता है आपका, देखो कब संकलन हुआ है आपका ध्यान, ध्यान तो 10 साल के बाद जाता है क्या? पहले नहीं पढ़ा था तो क्या? पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं गया था। अब जब विषय चलता है, स्वाध्याय में ये विषय निकला, चल रहा है, तो जब पढ़ा तो 10 साल के बाद उसका ध्यान गया। ये तो मानसनकार थे पुराने बम्बई के अपने प्रवचन करने वाला, मेरा भाई रहे गांव वाला, मेरा ध्यान नहीं गया था। सब बात यही खींची है, बात तो कोई खास गुरुदेव की उपस्थिति में वो संकलन मैंने किया था
जी,
33 के साल में किया था, ये तो 16-17 साल में। उपस्थिति में मेरा ये ध्यान दिया था कि गुरुदेव विराजते हैं, लोगों का ध्यान नहीं है, तो सतपुरुष का प्रत्यक्ष योग का महत्व क्या होता है, ध्यान नहीं था उस विषय पर, किसी का ध्यान नहीं है।
એના બદલે આપણે સ્થાન ઊંચે સ્થાન મૂકી
દે, એમના સ્થાનમાં એટલે શિવ પ્રતિ જો ભગવાન ભક્તિ હોની ચાહીએ, ઉસમે કોઈ નાપજોક નાપા નાપજોક કરના ચાહીએ, વહી બાત હે ને? ઇનકો તો 2 કિલો, ઇનકો 4 કિલો, ઇનકો 6 કિલો, ચતુર્થ ગુણ સ્થાન વાળે કો 4 કિલો દેના, छठे गुण स्थान वाले को 6 किलो देना, 13वें गुण स्थान वाले को 13 किलो देना, ऐसी बात है क्या?
हाँ? कहते हैं कि गुरु पद आपी दो, जो छठो गुण स्थान छे जैन एवं पद तुम इनने आप मांगो छो, अगर तो एवं जितनी तुम्हारी प्रवृत्ति
का तो उसको परमेश्वर पद देने देते हैं
जी,
छठा नहीं देते हैं हम तो परमेश्वर पद देते हैं, इसका कारण है, उसका लॉजिक है हमारे पास कि जो 13वें गुण स्थान वाले को निमित तत्व है, जो 6ठा गुण स्थान वाले को निमित तत्व है, यही निमित तत्व चतुर्थ गुण स्थान वाले को है। तुमको तैरना है, डूबते हो कि नहीं डूबते हो पहले तो ये नक्की करो
जी,
कि डूबते हो कि संसार समुद्र के मध्य में डूब रहे हो या नहीं डूब रहे हो?
डूब रहे,
डूब रहे हो, ये भान नहीं होगी तो सवाल ही नहीं है
जी।
जब ये कहने वाले को तो ये भान ही नहीं है कि मैं डूब रहा हूं और मुझे जैसे कैसे भी बचना है, ये इसको भान नहीं है। इसलिए वो कहता है कि स्टीमर आएगी तो मैं बैठूंगा वरना भले ही डूब जाऊं। तो ये 13वां गुण स्थान वाला तो स्टीमर है, 6ठा गुण स्थान वाला तो होड़ी है, होड़ी मिलेगी तो बैठूंगा, और चतुर्थ गुण स्थान वाला तो एक पटिया है या पेड़ का एक बड़ी शाखा है कि जिसको पकड़ने से भी तिर सकते हैं। अब कैसे भी जो बचा वो पूरा बचा या अधूरा बचा, इसको क्या फर्क पड़ा? जो डूबने से बच करके किनारे पर आ गया वो पूरा बचा या अधूरा बचा?
पूरा बचा।
तो उतनी अक्ल जिसमें नहीं है उसको क्या कहें? क्यों इतनी अक्ल नहीं है? क्यों खुद डूब रहा है उसका पता उसको
नहीं है,
इसलिए उसको बचने का भाव नहीं है। वास्तव में वो बातें उनको ये भान नहीं है कि मैं डूब रहा हूँ संसार में, कहाँ चला जाऊंगा, उसकी चिंता उसकी फिक्र उसको लगी नहीं है। और मेरे ये तिरने के लिए अब तो दूसरा साधन है ही नहीं, न स्टीमर आने वाली है होड़ी भी आने वाली है, मेरे 150 वर्ष का जो आयु है इसमें तो यही मिलने वाला है, पटिया ही मिलने वाला है, सड़ा हुआ तो भी क्या है, मैं तो पकड़ूंगा तो तिर जाऊंगा। जो अंतर है वो इन लोगों के आपस के उपादान में अंतर है, पर हमको कोई मतलब नहीं है इसके उपादान से, हमारा तो उसमें रहा हुआ जो निमित्त वह इससे हमारा मतलब है, वो तो एक सा है, वो कोई अधूरा नहीं होता। तो ये गिनती उल्टी करते हैं क्या कहें, इसको चिंता यही कारण है। इसलिए अनंत काल में जीव ने यही जगह पे भूल किया है, अनंत काल में इसी सतपुरुष के बारे में ही भूल किया है। क्यों? कि सतपुरुष की दशा कोई अटपटी है, जैसे मुनि की भगवान की सीधी दशा है, ऐसी सीधी दशा नहीं है ना इसके, तो उसकी दशा उल्टी है बार में दिखती है, तो वहां भूल करता है जी, बाह्य दृष्टि है, भूल करता है, एक जगह भूल करता है तो देव गुरु शास्त्र तीनों का निषेध हो जाता है, तीनों की विराधना हो जाती है। ये गड़बड़ी इतनी बड़ी होती है उसका तो पता नहीं है, इस रहस्य को जानते नहीं।
इसमें भूल करता है देव गुरु शास्त्र तीनों में भूल करता है,
तीनों का निषेध हो गया, तीनों की एक सत्पुरुष की विराधना या निषेध हुई तो देव गुरु शास्त्र तीनों की विराधना और तीनों का निषेध हो गया, और उनको पता नहीं है इस बात का।
बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा अपराध बात ऐसी,
ये बात तो समझते नहीं।
इसके फल में क्या मिलेगा? इसके फल में क्या है?
इसके फल में द्वेष से निषेध होगा तो नरक, और माया से निषेध होगा तो निगोध, अनंत काल बाहर नहीं निकल पाए, वो तो देखते कांपने लगे, इस बात को विचार में लेते ही कांपने लग जाएंगे, ऐसी बात खराब कि तो किसी को न हो ऐसा, ऐसा लगता है कि किसी को ऐसा नहीं हो। बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध संसार में कोई है ही नहीं, इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है संसार में, ऐसी बात है। इसलिए ये तो किसी को होना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात है। पर उसको भगवान
समझ,
जो देवगुरु शास्त्र है उसमें तो गुरु छठे गुण सातवें गुण लिए है, उसका स्वरूप तो अंतर्बाह्य निगम होता है, लेकिन सतपुरुष उसको गुरु कहने में भी आपत्ति नहीं और भगवान कहने में भी कोई आपत्ति नहीं, वो लोग दोष मानते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? ये तो तुम्हारा दोष है, ना समझ लोग है कि आप ऐसा बोलते हो, ऐसा कहता है, देखते नहीं है संयम, ये चौथे मुस्तान वाले कोई संयम नहीं है, उनका अभिवृत्ति है, ऐसा करते हैं वो लोग, समझते नहीं।
सदगुरु पद में समर्थ है,
हाँ वो तीनों पद इसमें आ जाता है। देवगुरु शास्त्र तीनों सतपुरुष के समान है, ऐसी बात है।
शंका के लिए स्थान ही
नहीं, कोई स्थान शंका की कोई गुंजाइश नहीं,
क्योंकि तो भाई हूँ पद की
उनका अरहंत आदि सदगुरु में समावेश है, वो कई पद आवे से
प्रत्यक्ष सतपुरुष की प्रत्यक्ष सतपुरुष की